शनिवार 16 अप्रैल नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं निखिल रंजन। क्या चुनावी राजनीति की मजबूरी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी राजनीतिक दल भीमराव अंबेडकर की परंपरा का वारिस बनने की होड़ में हैं। तो क्या ये पार्टियां अंबेडकर के विचारों से सहमत हैं या अंबेडकर को स्वीकार करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है? इंडिया बोल में आज चर्चा होगी, अंबेडकर के प्रति अचानक इतनी श्रद्धा क्यों? कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। चर्चा थोड़ी देर में, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। भारत प्रशासित कश्मीर में जारी तनाव का मुख्य कारण बनी लड़की की मां ने आज कहा है कि पुलिस और सेना के दबाव में लड़की से वो बयान लिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ छेड़छाड़ सेना ने नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं ने की थी। इस घटना के बाद हुई हिंसा में अब तक एक महिला समेत 5 लोग मारे गए हैं। घाटी में अभी भी तनाव की स्थिति है। पोप फ्रांसिस ग्रीस के टापू लेस्बोस में एक प्रवासी गृह का दौरा करने के बाद अपने साथ सीरिया के 12 मुस्लिम प्रवासियों को इटली लेकर जा रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने यूरोप में जारी प्रवासी संकट का समाधान निकालने के लिए दुनिया से और प्रयास करने की अपील की है। मोरिया शिविर में 3000 लोग रह रहे हैं जिसमें से कई को वापस तुर्की भेजा जाना है। इन प्रवासियों से उन्होंने कहा कि आप उम्मीद ना छोड़ें। पोप का कहना था कि उन्होंने इन लोगों की पीड़ा देखी है और उम्मीद करते हैं कि दुनिया मानवता के प्रति अपनी साझा जिम्मेदारी के आधार पर काम करेगी। उनका कहना था कि उनकी यात्रा का मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बदतर मानवीय आपदा को देखना है। उन्होंने प्रवासियों से कहा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। इन हफ्तों और महीनों में आपने एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत पीड़ा देखी है। आपके लिए परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आपको मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े। संघर्ष से अपने बच्चों को बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया। आप लोगों ने बहुत त्याग किए हैं बगैर ये जाने कि आपका भविष्य क्या होगा। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि भूकंप से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए राहतकर्मी जुटे हुए हैं। उन्होंने चेताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है और ऐसे में राहतकर्मियों को तेजी से काम करना होगा। हजारों की संख्या में सैनिक मलबे में फंसे हुए लोगों की खोज कर रहे हैं। क्यूशू द्वीप में आए भूकंप में अब तक करीब 30 लोग मारे गए हैं, वहीं लगभग 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सड़कों और पुलों को हुए नुकसान की वजह से दूरगामी पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी बीएनपी ने पत्रकार शफीक रहमान की गिरफ्तारी की निंदा की है। विपक्षी पार्टी ने धमकी दी है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। पत्रकार शफीक रहमान को ढाका में हिरासत में लिया गया था। उन पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे को अगवा और हत्या करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। रहमान बीएनपी पार्टी की नेता खालिदा जिया के सलाहकार हैं। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोगरिनी का कहना है कि ईयू ईरान के साथ संबंधों को नया अध्याय शुरू कर रहा है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान वे वाणिज्य, ऊर्जा और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगी। हालांकि पर्दे के पीछे इस बातचीत को लेकर असहमतियों की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि कुंदूज और तखार प्रांतों की सीमा पर सेना और तालिबान के बीच भारी लड़ाई हो रही है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
अंबेडकर की विरासत और राजनीतिक दलों में इसे पाने के लिए बची होड़ पर चर्चा हो रही है बीबीसी इंडिया बोल में। अगले आधे घंटे स्टूडियो में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक राकेश सिन्हा और बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी। साथ ही रामपुर उत्तर प्रदेश से टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कमल भारती, जो दलित से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं, बोलते और काम करते रहे हैं। साथ ही आप सब जो लोग हमें सुन रहे हैं फोन पर या फिर सोशल मीडिया पर अपनी राय जता रहे हैं, स्वागत है आप सबका। मैं हूं निखिल। सबसे पहले राकेश जी, आप विषय से वाकिफ हैं और इस पर आपकी सबसे जो पहली प्रतिक्रिया है कि क्या ये जो राजनीतिक दलों में जो होड़ मची हुई है ये आप भी महसूस कर रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है ये होड़ नहीं है। पहले जो सरकारें थी वो या राजनीतिक पार्टियां थी वो बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ उपयोग एक सांकेतिक तरह से कर रही थी। इस बार सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक ऐसा जो उनका ड्यू था, जो उनके लिए अपेक्षित था, वो एक राष्ट्रीय दर्जा दिया, उनको सम्मान दिया, चाहे उनके स्मारक के रूप में हो या उनकी जयंती के रूप में हो। आज उनका सम्मान उसी रूप में हो रहा है जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य नेताओं का होता था। इस कारण से और राजनीतिक दलें भी उस मैदान में कूद गई हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, ये बहुत ही ठोस काम सरकार कर रही है और साथ साथ उस विचारधारा से जुड़ी हुई संस्थाएं खूब जमकर जमीन पे काम कर रही हैं। तो मैं कहता हूं, होड़ की जगह जो लोग पहले करते थे और जो अब हो रहा है उसमें एक गुणात्मक अंतर दिखाई पड़ रहा है।
राजेश जी, आप इनकी बात से सहमत है क्या? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग पिछले 8 साल 10 साल से देख रहे हैं उसमें लगातार ये जो जिस तरह से मतलब ये शुरुआत तो कांसीराम ने की और उसको एक बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाया, उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुए और एक अलग मुहिम की शुरुआत हो गई। लेकिन इधर जो पिछला 8-10 साल रहा है उसमें चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी तो खास
जी, ये दरअसल सांकेतिक एक तरह से राजनीति हो गई है। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेता थे उनका इस्तेमाल चुनाव में कैसे हो, ये हर राजनीतिक पार्टी इसका इस्तेमाल करती है। चाहे वो गांधी को, एक बहुत ही मजाक में कहा जाता है कि गांधी को स्टेपनी की तरह इस्तेमाल हर राजनीतिक पार्टी ने किया, उसी तरह एक नई स्टेपनी बन गई है जिसका नाम है भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि बहुत सारे दलित समाज के लोग भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। दूसरे समाजों के लोग नहीं मानते थे ये अब तक कुछ ही सालों पहले तक, ब्राह्मण समाज में, क्षत्रिय समाज में या दूसरी जातियों के समाज में भीमराव अंबेडकर का वो स्थान नहीं था। स्टेट में यानी राज्य राजसत्ता जो अगर कहा जाए पार्टी पॉलिटिक्स से अलग, उसमें भी भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी जगह कभी नहीं थी। किताबों में हमने जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे अंबेडकर के जितनी आज चीज़ें सामने आई हैं उतनी नहीं होती थी। ये तो उत्तर प्रदेश में जब से बहुजन समाज पार्टी का उत्थान हुआ है, दलित एक तरह से एकजुट हुआ है, उसके बाद से भीमराव अंबेडकर की बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई एक तरह से करने लगी हैं राजनीतिक पार्टियां। अभी बहस होगी।
कमल भारती हमारे साथ रामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं जो लगातार दलित मुद्दों पर काम करते रहे हैं। कमल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपने हमारे दोनों गेस्ट की बात सुनी। आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, क्या पिछले कुछ सालों में आप कुछ उभार देख रहे हैं लगातार?
बिल्कुल उभार तो हो रहा है लेकिन इसका लाभ भी होता है। डॉक्टर अम्बेडकर का राजनीति दलों ने जो भी उपयोग किया उसका एक लाभ भी हुआ है। वो पहले जैसे कि 1990 के अंदर जब इनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी तो उसी दौर में डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं हिंदी में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। एक बड़ा फायदा ये हुआ कि हिंदी में उनकी रचनाएं आई और ये उसी राजनीति के कारण हुआ।
कमल जी माफ कीजिएगा, मैं राजेश जोशी बोल रहा हूँ, आपकी मोबाइल फोन पर लाइन ठीक नहीं है, हमें सुनाई नहीं पड़ रही आपकी आवाज। एक बार इस फोन को काट के दोबारा से हम लोग आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच शायद निखिल हमारे श्रोताओं की आवाज सुन ली जाए पहले।
जी अपना नाम बताइए।
जी मैं मोहम्मद खसाली साहब बोल रहा हूँ, ग्राम पोस्ट विष्णु धाम बरवनिया थाना भगवानपुर हाट जिला सिवान बिहार से।
जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
जी मैं ये कहूँगा जिस तरह से आज के राजनीतिक दलों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उठाया है ये वर्षों पहले उठाना चाहिए था। जो तवज्जो आज जिस तरह से राजनीतिक दलों ने दे रहे हैं ये तवज्जो आज लगभग 10 साल से दे रहे पहले उठाए थे तो शायद आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ये बना हुआ है वो आज दलित हम तमाम के बराबर पे हकदार बन जाता है।
जी बहुत शुक्रिया आपकी इस बात के लिए। और हमारे एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कहना क्या कहना है आपका, कौन बोल रहे हैं आप?
मैं लाडराम बिश्नोई।
जी बताइए बिश्नोई सर।
जिला बाड़ में राजस्थान से बोल रहा हूँ सर।
जी कहिए क्या कहना चाहते हैं आप?
जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई गई
जी,
तो शायद इस तरह की जयंती अगर पहले मनाई जाती लगभग 30-40 वर्ष पहले
जी,
जो निम्न वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनका विकास ऊपर उठता था, ये मैं कहता चाहता हूँ।
बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले राकेश जी, मैं आपने कहा कि जो अंबेडकर का स्थान है बाकी महापुरुषों के बीच में और जो अब तक शायद नहीं मिला था, तो ये अचानक से मतलब क्यों नहीं मिला, क्या कहाँ कमी रह गई, क्या समस्या थी, इस पर क्या सोचते हैं?
देखिए, एक बहुत तथ्यात्मक बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जो पार्टियों में जो होड़ है, एक डोमिनेंट पार्टी कांग्रेस होती थी, है वो जब संविधान सभा में पहली बार आ रहे थे तब उन्हें योगेंद्रनाथ मंडल का सहारा लेना पड़ा जो बाद में पाकिस्तान चले गए। दूसरी बार जब संविधान में आ रहे थे तो कांग्रेस ने बहुत रुकावट डाली तो डॉक्टर जयकर को इस्तीफा देना पड़ा, तब संविधान सभा में आए। संविधान सभा बनने के बाद जब दो बार हुए लोकसभा का चुनाव लड़े, दोनों बार कांग्रेस ने उनकी हार को सुनिश्चित किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर को हाशिए पर डालने की जो एक राजनीतिक कोशिश हुई, एक मुहिम हुई, दलितों का वोट लो और डॉक्टर अम्बेडकर को हाशिए पर डालो, आज एक स्थिति बनाई जा रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि को सेमिनार रूम से बाहर निकालकर जमीन पर लाई जाए। इस संदर्भ में उद्धृत करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कि अस्पृश्यता अभी भी विद्यमान है देश में और दलितों का उत्थान नहीं हुआ, उन्होंने जो एक कुआं एक शमशान और एक मंदिर का जो नारा दिया है वह एम्प्टी स्लोगन नहीं है, वह संघ के लिए एक प्राथमिकता बन गई कि आने वाले कुछ वर्षों में जमीन पर जाकर दलितों के साथ इंगेज होना और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को सामने रखना।
दलितों के साथ इंगेज होने की जो बात कर रहे हैं राकेश सिन्हा साहब, यह क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, राजनीतिक संगठन नहीं कहता है, उसकी एक राजनीतिक मजबूरी नहीं बन गई है? पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंबेडकर के लिए यात्रा कल निकालने वाले हैं, रविवार को एक इतना बड़ा समारोह कर रहे हैं और अंबेडकर के साथ मोहन भागवत की तस्वीरें लगातार आती रही हैं, जब आप पथ संचालन करने की तस्वीरें जब हम लोग देखते हैं। ये अंबेडकर 2016 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए महत्वपूर्ण बन गए, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अस्तित्व है, क्या हुआ 1925 से 2016 में, क्यों मजबूरी हो गई ऐसी?
राजेश जी, आपका सवाल बहुत ही जायज है। मैं इतना बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी रचनाओं में, भाषणों में, आपने पढ़ा भी होगा, कांग्रेस की, कम्युनिस्ट पार्टी की, हिंदू महासभा की, महात्मा गांधी की आलोचना की, लेकिन संघ जो सबसे विजिबल ऑर्गेनाइजेशन है शाखा के कारण, अंबेडकर जी ने उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा।
उसकी वजह यह थी क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे आजादी के आंदोलन में उतना मुखर होकर के सामने नहीं आया था जितना हिंदू महासभा, जितना कांग्रेस, जितना गांधी, जितना
नहीं, उसका
उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सवाल यहां पर, बहस ये है, दो बातों पर ध्यान दीजिए जो आज हम, दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की भी बात है, ये कांग्रेस की भी बात है। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी थी निखिल जी, कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह सब तो बहुत महत्वपूर्ण नेता होते थे, अंबेडकर का कहीं नाम निशान नहीं था आज से 30-40 साल पहले आप देखिए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अंबेडकर कभी मजबूरी नहीं बने थे, दलितों का जो एक तरह से दलित की यूनिटी बनी है, एकता बनी है, उसके बाद आपकी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई है, वरना जो चेहरा है अंबेडकर का वो महत्वपूर्ण हो गया आज, उनके विचार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि
जी, मैं उसी पर आ रहा था, मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रहा था कि
जिस हिंदुत्व की बात आप करते हैं उस हिंदुत्व के बारे में क्या कहा है
संघ और बीजेपी, जिस हिंदुत्व की बात करता है और वो हिंदू धर्म को लेकर के जो उनकी आस्था है उस पर बहुत करारा चोट किया है अम्बेडकर ने। मैं कुछ कोट आपको सुनाना चाहूंगा जो जाहिर सी बात है कि आपके जहन में भी कहीं ना कहीं आए होंगे, कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं पैदा एक हिंदू के रूप में हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। जाहिर सी बात है कि आपको ध्यान होगा कि उन्होंने अपने मतलब आखिरी समय में उन्होंने अपने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, और बहुत मतलब हिंदू शास्त्रों के बारे में वो कहते हैं कि शत्रु वो लोग नहीं जो जाति व्यवस्था का पालन करते हैं, बल्कि वो शास्त्र हैं जो जाति व्यवस्था का पाठ पढ़ाते हैं, असली उपचार शास्त्रों की श्रेष्ठता को नष्ट करना है। आदर्श हिंदू एक चूहे की तरह होना चाहिए जो बिल में रहे और दूसरों को के संपर्क में आने से इनकार कर दे।
उन्होंने हिंदू को बीमार
मानसिकता,
तो कहा आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू एथोस की बात करते हैं, लेकिन उसको तो अंबेडकर साहब ने एकदम रिजेक्ट खारिज किया था।
मैं दोनों सवाल का जवाब देता हूँ, पहले एक सवाल का जवाब दे दूँ कि देखिए संघ ने एक प्रातः स्मरण होता है जिसमें महान लोगों को संघ की सुबह में स्मरण करते हैं स्वयंसेवक, उसमें डॉक्टर अंबेडकर को 60 के दशक में जोड़ा गया
और गांधी को भी जोड़ा गया, पहले नहीं थे गांधी।
नहीं ठीक है, समय के साथ चीजें बदलती हैं,
लेकिन क्यों गांधी ने तो 1947 में वो राष्ट्रपिता कहलाए।
नहीं, 60 के दशक में हमने जोड़ा, देखिए एक आंदोलन अपनी तरह से विकसित होता है और दत्तोपन ठेंगरी ने जो संघ के सबसे बड़े सिद्धांतकार थे, आज़ादी के बाद एक बड़े सिद्धांतकारों में एक थे, उन्होंने अंबेडकर जी पर उस वक्त पुस्तक लिखी जब अरुण सोरी ने उन पर सवाल खड़ा किया उनके आज़ादी के आंदोलन में, तब दत्तोपन ठेंगरी ने एक मराठी हिंदी अंग्रेजी में पुस्तक लिखी गई संघ के द्वारा और अरुण सोरी को खारिज किया गया। इससे अम्बेडकर और संघ के बीच एक संवाद रहा है। हाँ, दूसरी बात देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूल रूप से हिंदू धर्म पर आपत्ति थी, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को बनाए रखना और उस पर धर्म का मोहर लगाना। आज संघ सबसे अधिक जाति विहीन समाज की बात करता है,
जाति विहीन समाज की बात करता है, लेकिन संघ हिंदू धर्म की बात करता है, हिंदू एकता की बात करता है।
एक राजेश
अंबेडकर हिंदू धर्म को खारिज करते हैं, हिंदुत्व को खारिज नहीं करते।
एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए मोहन भागवत जी ने भी एक बयान दिया था, बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि शास्त्रों की रचना वैज्ञानिकता के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात जो अवैज्ञानिक और जो कालबाह्य चीजें हैं उसको शास्त्र से निकालना चाहिए।
संघ क्या संघ मनुस्मृति को जलाने की बात स्वीकार करेगा? नहीं करेगा।
देखिए किसी
मनुस्मृति में जो कहा गया है,
आपको मैं बता दूं कि मनुस्मृति को जलाना एक प्रतिक्रिया थी बाबा साहब अंबेडकर की। किसी धर्म ग्रंथ को जलाना समाधान नहीं, समाधान
है अंबेडकर को मानते हैं, जो मनुस्मृति को जलाता है या जो सिर्फ संविधान के हाथ में लेकर के
नहीं, जो 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 अंबेडकर हिंदू समाज में बुनियादी सुधार चाहते, जिसमें तीन बातें उन्होंने कही,
उन्होंने तो हिंदू समाज में सुधार की बात ही नहीं, उन्होंने तो कहा हिंदू धर्म को त्यागना है।
नहीं, उनका जो मूल पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उन्होंने लिखा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, उसमें तीन बातें कही, जैसे जो पुरोहित होते हैं वो हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए, दूसरा अंतर जाति विवाह की बात कही, तीसरा उन्होंने कहा कि मंदिरों में सबका प्रवेश होना चाहिए। और एक अंतिम इंस्टांस दे दूं, एक सेकंड लगेगा, कि देखिए कालाराम मंदिर में नासिक में उनके प्रवेश को रोका गया, ऐसा संयोग बना कि जिस पुजारी ने रोका उसके पोते ने, जिनका नाम स्वामी सुधीर है, संघ के प्रयास से लगभग 150 महार जाति के लोगों को मंदिर के अंदर ले जाकर पूजा अर्चना कराना। तो परिवर्तन का एक दौर चल रहा है, हम पीछे जरूर छूट गए, धीमी गति थी, उसी को संघ ने अब तेज गति दिया है कि सामाजिक संरचना को बदलाव के लिए संघ एक अभियान के रूप में ले रहा है।
जी, मैं कुछ हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए।
हाँ जी, मैं अब्दुल अजीज भट्टजी जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ।
जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर?
देखिए जी, मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे एक शेर याद आ गया कि ये जानते हुए भी कि बस्ती उजाड़ है, आदत सी हो गई है उस पार देखना। तो
क्या बात है, वाह बहुत बेहतर भट्ट साहब, ये जानते हुए भी कि बस्ती उजाड़ है, आदत सी हो गई है उस पार देखना। किस पार के इशारा, के इशारों में क्यों बात कर रहे हैं? सीधे सवाल पूछिए।
जो हमारी राजनीति आज की है बूढ़ी हो चुकी है, अब जो किसी के यहाँ कोई मर जाए ना, तो अगर वहां नहीं जाते तो वो कहते हैं मेरे घर नहीं आया। अब ये तारीफ करना हमारे लिए एक मजबूरी बन गई है।
जी भट्ट साहब,
जो अंबेडकर जी थे ठीक है, माना उनके साथ बड़े बड़े नेता थे और मौलाना अबू अल कलाम आजाद थे या दूसरे लोग थे, लेकिन आज जो भारत में दलित और गैर दलित का चल रहा है, तो ये मजबूरी है राजनेताओं की कि वो वोट के लिए करते हैं, लेकिन आज जो ये लोग हैं भारत में, लेकिन वो उस चक्कर में आने वाले नहीं है
जी।
लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये राजनीति कर रहे हैं।
आप ये बताइए भट्ट साहब, एक मुख्तसर सा सवाल का जवाब दीजिए और बहुत ही संक्षेप में दीजिएगा कि जब ये कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मायावती जी वगैरह वगैरह अंबेडकर साहब की बात करते हैं, आपको कितना भरोसा जगता है इनकी बात पर? आपको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं सब लोग, या आपको लगता है कि ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं?
नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की तो बात ही मत करो, कांग्रेस ने तो लोगों को बेवकूफ बनाया आज तक। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये मजबूरी में उनका वो कर रही है कि भाई कल को ये ना कहे कि ये दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है या किसी लेते। भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी पार्टी है और ये जो काम कर रही है ये ठीक कर रही है, लेकिन दूसरों को भाता नहीं है। जो ये हमारे कांग्रेसी है या दूसरे तीसरे, जैसे अभी आप देख लो दिल्ली में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वो तो स्वयं मोदी के नुक्ताचीनी के बगैर उनको कुछ आता ही नहीं है।
जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इन बातों के लिए। जरूर राकेश जी इस बात से खुश हो रहे होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी मैं भजनलाल गांव कोजा बाड़मेर से बोल रहा हूँ।
जी भजनलाल जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दिखाना चाहती है कि हम दलित समाज के साथ है। जो दो तीन मामले हुए थे दलित समाज के, इसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है अम्बेडकर का सहारा लेकर।
तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ उनके नाम का सहारा ले रहे हैं, वास्तव में उनके मन की कोई भावना ऐसी नहीं है?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इनकी पहले भी सरकार आ चुकी थी, वो चाहते तो अम्बेडकर को पहले भी ऐसे जयंती मना सकते थे और उनका नाम आगे ला सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। अभी ये मोदी कर रहे हैं, ये दलित को अपना वोट बैंक बना रहे हैं।
एक जो प्रतीकों की बात होती है जी। राकेश जी, यहाँ पर फरीदाबाद में जब आगजनी हुई थी तो आप ही की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री वीके सिंह ने दलितों के बच्चों की तुलना जिस तरह से की थी, जिन शब्दों में की थी, वो अखबारों में आया था, हर जगह आया, उससे दलित समाज में एक नाराजगी आई थी। फिर बिहार चुनाव से पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत ने रिजर्वेशन के बारे में जो बयान दिए उसका असर वहां पे हुआ। प्रतीकों के साथ ये खेलना, कभी हाँ कभी ना, इसको आप कैसे समझाएंगे?
पहले तो बीके सिंह जी ने जो उपमा दी थी, जिस भी संदर्भ में दिया हो उसको, उसे पार्टी और विचारधारा ने अपने आप को अलग किया, उनकी निंदा की, उन्होंने माफी मांगी इसके लिए।
तो ये तो कन्वीनियंट है ना, जब आपको माफी नहीं आया आप कहें नहीं साहब भाई पार्टी का और संगठन का विचार नहीं है, माफी का आ जाए तो कहें
व्यक्ति की नीयत कुछ हो सकता है, अगर अच्छा गलत नीयत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो उपमा दी गलत थी, उनकी निंदा की गई। लेकिन एक दो मोहन भागवत जी की बात कही, राजेश जी आप भी जानते हैं कि संघ रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं था, मोहन भागवत जी ने कहा रिव्यू किए जाए, रिव्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है।
उन्होंने उसके बाद ये भी बात आई कि जो पिछली ब्राह्मण जातियों या अगड़ी जातियों के जो गरीब लोग हैं उन तक भी रिजर्वेशन
नहीं,
का
मोहन जी ने कोई
मोहन जी नहीं कहा, लेकिन इस तरह की बातें बीच बीच में आती
है। संघ का इतना ही मानना है कि रिजर्वेशन के बावजूद भी आज दलित समाज पिछड़ा हुआ है, तो हमें इस प्रकार से उस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि रिजर्वेशन तक भी वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो संघ इतना ही चाहता है कि दलित समाज के निचले वर्ग का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण इतना हो जाए कि रिजर्वेशन का लाभ लेने में अधिक से अधिक दलितों को अवसर मिल सके।
मेरा एक सीधा सवाल, एक अब जब श्रोता जो आएंगे उनको थोड़ा सा रुकवाइए आपसे, मेरा सीधा सवाल है क्योंकि आप ही यहाँ बैठे हुए हैं संघ के प्रतिनिधि के तौर पे, क्या संघ ऐसा कोई कॉल देगा, ऐसी कोई अपील करेगा जिसमें ये रिजर्वेशन वगैरह की बात नहीं, दलितों और ब्राह्मणों या क्षत्रियों और दलितों के बीच में रोटी बेटी का संबंध के कोई अपील क्या मोहन भागवत की तरफ से आएगी?
देखिए, एक शमशान, एक मंदिर और
नहीं,
एक
वो अलग बात
नहीं, जब दलित, देखिए जब दलित
ऊंची जातियों के लोग अपनी बेटियों की शादी क्या दलित लड़कों से करेंगे, बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, क्या संघ इसमें समर्थन करेगा?
देखिए, सामाजिक संवाद में विवाह भी आता है और अंतरजातीय विवाह का संघ हमेशा समर्थन करता रहा, प्रोत्साहित करता रहा है।
अंतरजातीय विवाह की बात नहीं हो रही है, जब दलितों और अगड़ी जातियों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में विवाह की बात,
यदि दलितों और ब्राह्मणों के बीच में ऐसी विवाह की अनेक घटनाएं घटी है जिसको संघ ने स्वागत किया है और उसका रिसेप्शन संघ ने दिया है, इसलिए हम इसके विरोधी नहीं है। दलित हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और उन्हें समाज में वही दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए जो दर्जा और सम्मान कथित रूप से अग्री जातियों को मिलता है।
जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये वापस चलते हैं कमल भारती के पास रामपुर में। कमल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपने चर्चा आगे बढ़ चुकी है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप?
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी राकेश सिन्हा साहब को सुना और लोगों को भी सुना, आरएसएस जो भी डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के चल रही है, दलितों को लेकर चल रही है, उसका मेन मकसद है डॉक्टर अम्बेडकर को ठिकाने लगाना। वो बुद्ध को ठिकाने लगा चुके, कबीर को ठिकाने लगा चुके, रैदास को उन्होंने ठिकाने लगा दिया, पूर्व जन्म का ब्राह्मण बता करके और क्षत्रिय बता करके, बुद्ध को विष्णु का अवतार बता करके, अब वो डॉक्टर अम्बेडकर को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, राष्ट्रवाद का हिंदू राष्ट्रवादी बता रहे हैं। ये सब उनकी ऊर्जा को, उनकी तेजस्वता को, उनकी क्रांतिकारिता को नष्ट करके उन्हें ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक दलितों के को जोड़ने की बात है, वो हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे हैं, हमेशा दलितों के विकास में उन्होंने हमेशा बाधा डाली है। वो केवल दलितों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दलितों के बगैर उनका हिंदू राष्ट्र की कल्पना कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ये उनकी मजबूरी है। वो हिंदू राष्ट्र, उनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में जो दलित हैं, वो उनके कच्चे माल की तरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
लेकिन क्या, लेकिन कमल जी एक सवाल यहाँ पे आता है, भारतीय जनता पार्टी और संघ पर तो सीधे इस तरह का आरोप लगाया जा सकता है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या बेदाग है इस मामले में जहां तक अंबेडकर का सवाल है?
देखिए, अंबेडकर का यदि आइडियोलॉजी किसी से मिलती है तो वो सिर्फ लेफ्ट के साथ मिलती है, ना मायावती से, ना कांग्रेस से, ना समाजवादी पार्टी से, किसी से नहीं। ये किसी भी सामंती पूंजीवादी पार्टी सांस्कृतिक पार्टी से अंबेडकर की आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं मिल खाती। अंबेडकर के साथ यदि कोई आ सकता है या उसको सही उपयोग करना चाहता है तो वो केवल लेफ्ट है।
लेकिन वामपंथी पार्टियों ने भी तमाम नेतृत्व में उनके ब्राह्मण रहे हैं या अगड़ी जातियों के लोग रहे हैं, उन्होंने भी कभी अंबेडकर को बहुत कोई ऊंचा स्थान नहीं दिया है। हमारे श्रोता एक है, उनसे पहले बात
पहले हम बात राकेश जी, थोड़ा उसके बाद राकेश जी आपके पास वापस आएंगे। जी अपना नाम बताइए।
हेलो जी, डिस्ट्रिक्ट यूपी से बोला हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ये महापुरुष लोग हैं इनको राजनीति के भाव में क्यों बुलाया जा रहा है आखिर।
जी 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 आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए।
मतलब ये जो इतने इतने बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने,
नहीं नहीं महापुरुष तो हैं लेकिन अवतार नहीं ना भाव, ये भाई साहब ये तो राजनीति के ही में ही पगे पले बढ़े, इन्होंने ही तो संविधान किया, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो क्या इनको अवतारों की तरह थोड़ी देखा जा सकता है।
नहीं सर अवतारों की तरह तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं इनको इसके राजनीति के इसमें डाल करके बाढ़ में डाल करके और इनको एक मुद्दा बना लिया जाए। बीएसपी आती है तो वो इसको अंबेडकर को ले लेती है, और वो सपा आती है तो उसको लोहिया को ले लेती है, किसी को ले लेती है, बीजेपी आती है तो किसी को ले लेती है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपनी बात के शुक्रिया।
गुफरान साहब हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ रहे हैं। गुफरान साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप।
मैं मोहम्मद गुफरान अंसारी बोल रहा हूँ
जी,
अररिया बिहार से। मैं अपना बात ये रखना चाहता हूँ की ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो की संविधान के लेखक है, संविधान को लिखे थे, तो उसको आरएसएस का मजबूर है मतलब उसको प्रोत्साहित करना। यदि ऐसा बात नहीं रहता तो ये अबुल कलाम आजाद जो कि शिक्षा मंत्री 1953 के थे उसको भी इस तरह से मतलब ये करना चाहिए। जैसे उस अम्बेडकर साहब का जयंती मनाया जाता है तो कलाम साहब का भी जयंती मनाना चाहिए। मैं यही
जी बहुत शुक्रिया। एक इनसे पहले कि राकेश जी, हिंदू कोड बिल का जो सवाल आया था उस पर अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था मंत्रिमंडल से, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने उनका विरोध किया था हिंदू कोड बिल पर। ये इतिहास की बात है, आप कुछ कहना चाह रहे थे।
देखिए मैं पहले तो
वामपंथी
पहले तो मैं ये कह दूं, कमल भारती जी को कह दूं, उन्होंने एक बात जो कही कि हिंदू राष्ट्र दलित के बिना पूरा नहीं हुआ, एकदम ठीक कहा उन्होंने। अंबेडकर जी स्वयं कहते थे कि भारत जो राष्ट्र है बिना दलितों का पूरा होगा नहीं, राष्ट्र नहीं देश है। तो मैं मानता हूं कि दलित समाज के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसको दूर करने का
कमल भारती ने कहा कि आप उनको ठिकाने लगाने
नहीं, ठिकाने
के लिए
नहीं, मैं एक चीज उनको बता दूं, कमल भारती जी को बता दूं, जिस साम्यवाद की वो बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी ने सबसे ज्यादा आलोचना कम्युनिज्म की है, साम्यवाद की है। और अंबेडकर जी का अंतिम भाषण पढ़ लें जो संविधान सभा में है, वो इतना बड़ा राष्ट्रवादी भाषण का है ही नहीं। उन्होंने कहा इस देश की, मेरी बात सुन लीजिए, इस देश की स्वतंत्रता तभी बचेगी जब हम अपनी विचारधारा को देश से ऊपर नहीं ले जाएंगे। और उन्होंने सबको कहा, सबसे अपील की, स्वयं से भी कहा कि देश सबसे ऊपर है, विचारधारा ही नीचे है।
कुछ कहना चाह रहे हैं
क्या कमल भारती?
देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कम्युनिस्टों की निंदा की है, कम्युनिज्म की है, समाज व साम्यवाद की निंदा नहीं की है। दूसरी उन्होंने अपने वो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चाहते थे, भूमि का राष्ट्रीयकरण चाहते थे, उद्योग का राष्ट्रीयकरण चाहते थे, बीमा का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। क्या कांग्रेस ने और बीजेपी की सरकार ने किया? करने को तैयार है?
देखिए नहीं नहीं, देखिए आप अंबेडकर जी की जो व्याख्या कर रहे हो गलत व्याख्या है, आपने उनको पढ़ा नहीं है। साम्यवाद पर उनकी क्या राय है? एक छोटी सी बात जोड़ दूं राजेश जी, कि इस सरकार ने, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस सरकार ने एक जो काम किया है कि सभी बैंकों से कहा कि एक दलित एंटरप्रेन्योर तैयार करें, और अगले 3 साल में 125,000 दलित एंटरप्रेन्योर तैयार होंगे। इससे बड़ा दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण आजादी के,
125,000
दलित एंटरप्रेन्योर तैयार होंगे, इससे अधिक किसी भी सरकार ने आजादी,
सामाजिक न्याय मिलेगा दलितों को या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर का जो नारा है, सिर्फ नारा नहीं है,
अदालतों में न्याय मिलेगा, सरकार से न्याय मिलेगा, दलित ये अभी फिलहाल नहीं मानते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है इस मुल्क में। ये दलितों की तरफ से, दलित प्रतिनिधियों की तरफ से जो आ रहा है उनको ये नहीं लगता, जब तक उनको नहीं लगेगा राकेश सिन्हा, राजेश जोशी या निखिल रंजन के कहने से कुछ नहीं बदलने वाला।
एक बार राजेश जी मैं कह दूं, जो कुछ दलित नेता है जो वामपंथ के प्रभाव में, जो सिर्फ वामपंथ के प्रभाव में है, वही ऐसा कह रहे हैं, जमीन पर इसलिए संघ की आलोचना का फर्क नहीं पड़ रहा है।
वेमुला जो है वो एक दलित थे, लेकिन उनको उनकी उन्होंने आत्महत्या की।
देखिए वो एक अपवाद स्वरूप घटनाएं हैं, बहुत निंदनीय घटना है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जमीन पर संघ का जो काम है इसी कारण से इस तरह की आलोचनाओं का फर्क नहीं पड़ रहा है। दलित मोबिलाइजेशन संघ के साथ है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे अधिक दलित सांसद और विधायक देश में, इसका एक प्रमाण है कि दलितों का रुख किस ओर है।
ये तो वक्त बताएगा निखिल
आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा जी, कमल साहब, कमल भारती साहब और राजेश जोशी आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और अब वक्त खत्म,
समाचारों के लिए नहीं है,
समाचारों के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो समाचार और बाकी जो देश दुनिया की बड़ी खबरें हैं वो लेकर के हम बस डेढ़ घंटे बाद आपसे फिर हाजिर होते हैं। मुझे दीजिए अनुमति, और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम। धन्यवाद,
नमस्कार।